زبان و بیان کا انداز ہو جائے, جس قسم کی وہ کلام فرماتے تھے اسی قسم کے کلام ہم بھی کرنے لگے ہیں. جس قسم کی وہ باتوں کا مذاق کرا کرتے تھے اسی قسم کی باتیں ہم کرنے لگے ہیں. اس کا نام اس کی حضرت نے ہدایت سے تعلیم دی. اسی طریقے سے علم لینے کے بعد, عمل سیکھ لینے کے بعد, عمل کو زندگی میں, اس علم کو زندگی میں لا لینے کے بعد اور اس سانچے میں اپنے آپ کو ڈال لینے کے بعد, ان کے حکم کو پیش نظر رکھتے ہوئے, یہی چیزیں دوسروں کو سکھانا, اس کا نام خلافت ہے. اور دل میں, دماغ میں, آنکھوں میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہی بسے رہے, اس کا نام محبت ہے. اور یہ سارے اعتبارات سے جو تعلق بندے کا اپنے پیغمبر سے قائم ہوتا ہے, اس کا نام نسبت. یہ اس لیے سنایا کہ ہمارے آج کل کے نوجوان بچے پہلے تو اردو نہیں جانتے, پھر اردو میں نثر کو ہی نہیں جانتے تو نظم کو کیا جانیں گے, نظم کو نہیں جانے تو ان کی گوبھی میں پلنا اور دودھ پی کر بڑھنا اور جناب چولہے میں جلنا, لوریاں سننا, یہ تم کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ اس لیے یہ بات میں نے سنائی آپ کو کہ اگر کوئی نیا نیا آ گیا آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو بولے گا ایسا کیسا بات سمجھ میں نہیں آ رہی, کیا بات بول رہے ہیں لوگ, کب سمجھ میں آیا؟ ابھی بھی سمجھ میں آیا بلکہ بولنا بندہ مگر ابھی تھوڑا سمجھنا باقی سے تھوڑا تھوڑا ہی سمجھ میں آتے رہے گا ان شاء اللہ. جی اور عبادت کسے کہتے ہیں سمجھ میں آیا, عبادت کسے کہتے ہیں ابھی آیا نا اس میں. ہمیشہ تیار ہے کہ منشا کیا ہے بس وہ دیکھ لے تیرا نام, اس کا نام ہے عبادت. کمر باندھے ہوئے ان کے اشارے تاکتے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں, عبادت اس کو ہوتی ہے. اشارے تاکنے واگنے کا تو مسئلہ ہے, اتنی آنکھیں بند کر لے کے کانا بند کر لے کے بیٹھے گئے, زبردستی ہلا کے یہ کرو بولے تو, کیونکہ وہ کمر کسا ہوا ہے جو نہیں, اس کے نظر میں سستی, کاہلی, دیری, تاخیر, عدم دلچسپی, بے رغبتی, بہت سمجھنا, ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ان کے منزل کو پورا کرنے کے واسطے اس کو خود سے چل کے جانے کا نہیں ہے کہ پہاڑ اٹھا لے کے جانے کا, ایسا سمجھ جا رہا ہے. جو کمر باندھا ہوا رہتا نا وہ نہیں کرتا ویسا, چامت سومت رہنا, تیار رہنا, ان کے کیا اشارہ ہے وہ پورا کرنا, اس کا نام ہے عبادت. انہوں اشارہ کر رہے ماں باپ کی خدمت کرو, ہم بولے نہیں میں مسجد کے کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کر لوں, کا نام عبادت ہو رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں عبادت کرو, نماز ادا کرو, ہم کہہ رہے نہیں بیوی بچوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے بعد دکان میں بیٹھ کے رہتے, نام عبادت ہو رہی ہے. ان کا منشا ہے بڑوں کا اکرام کرو, ان کا اشارہ کیا ہے بڑے ہیں تم کا اکرام کرو, ہم کریں گے ہم ان کا ہی کریں گے جن سے اپنے کو کچھ ملتا, ایسا کچھ ہے کیا جو ہماری ماں کی اعانت کرتا, ہماری مدد کرتا, جی ہمارا پیار رکھتا ہے ان کا تو کریں گے اکرام, اور جو دوسرا بڑا ہے اس کو کوئی اکرام نہیں, یہ تھوڑا بن جائے. ان کا جو اشارہ ہے وہ تو یہ کہ چھوٹے کے ساتھ خدمت کرو, تو ہم جو اپنا چھوٹا ہے اس کے ساتھ تو کریں گے, اور جو بھی چھوٹا ہے اس کے ساتھ کریں گے, ایسا نہیں. یہ مشکل کام ہے, کمر باندھے ہوئے ان کے اشارے تاکتے رہنا, یہ ایک مشکل کام. کوئی ایسا طریقہ بتا دینا چاہتے ہیں لوگ, سننا چاہتے ہیں کہ جو بہت آسانی کے ساتھ بغیر کسی ظلم کی دشواری کے میں کر لے سکوں, بس وہ کام دے دو, دوسرے کام آپ دے دو. शरीयत अपनी होती, दीन अपना होता, दे देते थे, है ना। तो उनकी है ना, उसमें कैसा तब्दीली करेंगे बोलते ही। जैसे आजकल बहुत सारे लोग अजीब गरीब किस्म का मामला कर रहे हैं, दीन का कोई हुक्म पूरा नहीं करे परवाने का, अरे पता नहीं एक चीज रही तो बस इस्लाम यह नहीं सिखाता। अगर ऐसा ही होता तो ये पाप, ये 6,600 आया तो उतारने के क्या मतलब। नबी अलैहिस्सलाम के हजारों इरशादात के महफूज रखे जाने की क्या मतलब। आकाम की सारी तफसीलात, ये फर्ज है, ये वाजिब है, ये सुन्नत है, ये सब तफसीलात की क्या जरूरत है। गलत फहमी में शैतान मुब्तला कर देता है और हमारी गलत फहमी को हवा देने के वास्ते अपने हम ख्याल बहुत से लोगों को अपने तैयार करके बाजार में भेज दिया और उसके नतीजे में कुछ करने का मिजाज आज बात नहीं रहा। मंशा समझे शरीयत का क्या है, अल्लाह का क्या है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या है, उस मंशे को पूरा कर कमर बांधे हुए उनके इशारे ताकते रहना। बहुत से नौजवान बच्चे हैं, अरे भाई बड़े हो गए माशाल्लाह से, वालिदैन ने पढ़ाया लिखाया, डिग्रियां दिला दी, सब कुछ हुआ, बेटे कुछ काम कर लो, काम न करो। हिसाब सुना तो मुझे तो बड़ी हैरत हुई कि नौजवान बच्चे जाके इम्तिहान हाथ में पड़ गया, एक हर्फ नहीं लिखा। मुझसे पूछे कह के वास्ते नहीं लिखा, अगर मेरे मुकद्दर में कामयाबी है तो कामयाबी मिलती, बोल के बढ़ गया। अगर मारी गई कि नहीं लोग मुबतला होते चले जा रहे हैं, लेकिन जिस वक्त का जो काम है वो काम करो। वो साहब जब मुझे सुनाया था मैंने कहा कि पास नंबर तो कैसा भी मिले ही नहीं है उसको, लोगों का था पर्चा साफ रखने का, दवा भी दिया साफ सुथरा रखने के, 5 नंबर तो मिले ही होंगे उसको। बस शरीर में बच्चे बैठे गए, 5 नंबर कैसे मैं कैसे मालूम होगी अगर वो। खैर भाई, अपने दिल को अगर साफ सुथरा आईने की तरह बनाना हो तो क्या करना है, फजाइल से अपने बातिन को बचाना और फजाइल से अपने बातिन को आरास्ता करना। ये सबक चल रहा था, किस किस चीज से बचना है इसके बारे में आपको बताया गया कि साहब गीबत से बचना है, दूध से बचना है। कुरान की आयत हदीस मुबारक, का खुलासा और मफहूम भी ज़हन में रखना चाहिए। गीबत की मजम्मत में तो कुरान पाक में यूं आया है कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने का जैसा हाल है वैसे यार ये गीबत करना चाहिए। किस कदर खराब चीज है। और हदीस शरीफ में तो इसको बदकारी से ज्यादा बड़ा जुर्म करार दिया गया है गीबत को। और उसकी वजह ये बतलाई गई है कि ये करने के बाद में आदमी में शर्मिंदगी का एहसास नहीं होता, और जब शर्मिंदगी का एहसास नहीं होता तो तौबा की तरफ भी तवज्जो नहीं है। और इसकी बुराई उसके सामने, उसकी बुराई इसके सामने सुनाने का जो मिजाज लगने वाला होता है ना, वो भी इसी में दाखिल है समझ लीजिए। उसे चुगलखोरी कहते हैं, नमीमा कहते हैं, नमाम कहते हैं ऐसे शब्द। और ऐसे लोग जन्नत में नहीं जाएंगे कि सराहत अदगी हदीसों। और जहां तक झूठ का ताल्लुक है तो इस कदर संगीन जुर्म है अल्लाह की निगाह में कि अल्लाह ने शिर्क के मजम्मत के साथ, मुमानात के साथ इसको बयान किया। और हदीस शरीफ में आता है कि ईमान वाला झूठ नहीं बोलता। इसको भी निकालना है अपने अंदर, खिलाफ वाकया बात नहीं बोलो। और ये नौजवान बच्चे ये ध्यान में रखना, मजाक में भी झूठ नहीं बोल सकते। जैसे अप्रैल की पहली तारीख से बोलते लोग ऐसा हो गया वैसा हो गया वैसा हो गया, एकदम ऐसा आदमी जो खाली जहन हो सुजन की बात सुनता है तो एकदम परेशान हो जाता है कि भाई ऐसा कैसा हुआ। जब उसकी परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ती है, देखिए तो अरे तुम्हारा नहीं मालूम आज एक मित्र ले तो बोलता हूँ, मजाक में भी झूठ नहीं बोला। इन हालतों में या कैसी सूरत में भी गुंजाइश मिल सकती है उसके बारे में भी आसान है, मगर ये उन लोगों की बात है जो बचने का बहुत गैर मामूली इस्तेमाल करते हैं। अब ये खाली वेदी बता दिए तो ये तो मौके की तलाश में रहते बस। जैसे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में एक साहब आए, आपने और आने के बाद उन्होंने कहा कि हुजूर मुझे एक सवारी चाहिए, सवारी की जरूरत है, मेरे पास सवारी नहीं है, मैं फलाई जगह से फलाई जगह जाना चाहता हूँ, सवारी चाहिए। आपने फरमाया कि मैं तुम्हें ऊंटनी का बच्चा दूंगा। तो उन्होंने कहा कि हुजूर मुझे सवारी के लिए चाहिए, बच्चा लेके मैं क्या करूंगा, वो तो सवारी के लायक नहीं रहता। आपने फरमाया अल्लाह के बंदे जो भी होंगे वो ऊंटनी का बच्चा ही तो है। ये फरमाया तो मिजाह भी फरमाया लेकिन हकीकत के मुताबिक बात फरमाई ना। जैसे किसी के घर में दादा बाहयात हो, पर दादा बाहयात तो उस घर के बच्चों का जो बाबा है वो दादा का क्या है, बच्चा है ना। और ये बच्चों का दादा और परदादा के सामने क्या है, बच्चा है कि नहीं है। तो आमतौर पर गलत बयानी मजाक में भी नहीं करनी चाहिए। बल्कि उलमाए किराम और मुकर्रबीन और मदारिस के जिम्मेदार लोग जो जलसों वगैरह में मुख्तलिफ अफराद का तआरुफ कराते रहते हैं उसमें भी इसका ख्याल रखना जरूरी है। जैसा है वैसा तारुफ कराओ, या तारुफ ज्यादा नहीं है तो मेरा ऐसा ख्याल है कि एक ऐसी शख्सियत है उनकी कराना। हाँ सिर्फ हो अन्ना हो कर्जा, मेरा अपना ख्याल ऐसा है कि मैंने ऐसा समझता हूँ। उसकी समझ गलत हो सकती है खाली बगैर उसके गैर मामूली इफराद तफरीद इस जमाने में जारी है। गैर जरूरी अल्फाज से ताबीर किया जाता रहता है, ऐसे अजीब अजीब अल्फाज अल्फाज के दो दो लाइने तीन तीन लाइने अल्फाज के खत्म नहीं हो रहे, उसके बाद शख्सियत का नाम नामी इसमें गिरामी आ रहा है। ये एहतियात करो जैसा है वैसा बोलिए। मेरा बच्चे खास तौर से बहुत सारे नजर आ रहे हैं मेरे को दीनी मदरसों के, ये लोग बोलना पड़ता था सास से किसी के तारुफ करने बैठ जाते हैं ना तो रफी है जमा अल्लामा दौरा से पहले शुरू इससे नीचे उतरते ही नहीं। ना भी गए रोजगार कैशा किताबत वगैरह वगैरह मैं ऐसे बोलते चले गए। मोहब्बत में मोहब्बत अभी उतना ही बोलो जितना के हद में है, हद से आगे नहीं बढ़ो। वैसे कभी कभी हमारे बच्चे हमारा ऐलान करते रहते कहेंगे शर्मिंदगी होते रहती है, लोग बच्चे क्या क्या समझ रहे मालूम नहीं। अरे भाई जितना है उतना बोलो सीधा सीधा। तो दिल को आईने की तरह बनाना है तो रिवत यानी दिल में नफरत दूसरों की बुराई वाले जज्बात में रहना, तभी तो आता ना जबान से हो। दूसरे के बारे में बुराई दिल में बैठी भी रही तभी उसकी बुराई का तस्करा आप करेंगे, और पहले दिल में किसी चीज का गलत होना आदमी समझता है तब कहीं जाकर ही बोलता है, उसका दिल बोलता है लाया तो 2 रुपए बेचो, बोल रहा हूँ 1.5 रुपए में मैं लाया, झूठ है। तो दिल को अगर आईने की तरह बनाना है तो इन बुराइयों से अपने आप को बचाना, उसके साथ साथ हिर्स से अपने आप को बचाना, ये भी बहुत आजकल परेशान करने की चीज बनी हुई। बहुत ज्यादा की ख्वाहिश चाहत पैदा हो गई आज, लेकिन जरूरत की बकदर आदमी का मतवज्जे होना, और एक गैर जरूरी तौर पर ख्वाहिश और चाहत बढ़ती चली जाती है, ये भी होना वो भी होना वो भी होना और होना और होना और होना। ये हिर्स बहुत ही मजमूम सिफत है, अपने अंदरों को उससे बचा। जरूरत पूरी हो गई बस, हसद से अपने आप को बचाना, दूसरों के अच्छी हालत को देख के जलने की जो कैफियत रहती वो बड़ी खतरनाक कैफियत है। कहते हैं कि जिस पर जलता है उसको उतना नुकसान नहीं होता जितना ये जलने वाले को होता, ये पहले अपनी आग में जलता है हसद की। और जहां तक ये नए पने का ताल्लुक है, इससे तो बहुत ही बचा रहा अपने अंदर होने को, मैं ऐसा मैं वैसा मैं अच्छा मैं बड़ा मैं बाहसियत, ये मैं जो है बहुत ही तकलीफ का जरिया बनता है मुस्तकबिल के लिए। आदमी जलील गुस्वा हुए बगैर फिर आदमी बचना मुश्किल है, मुतकबिर जलील हो जाता है। और ये बहुत है आजकल बच्चों में खासतौर से बहुत ज्यादा है, हालांकि ये नकाइश बार बार सुनाए जाते रहते हैं कि भाई ये खराबियां जो अपने अंदरून में है, तो फिर अपने आप को बड़ा समझने का क्या तसव्वुर है। उसको निकालने के बाद से हर छोटे बड़े को सलाम करने की आदत डालो, छोटे से छोटा भी मिल जाए तो उसे सलाम करो, अपने हम उम्रों और मौका पड़ने पर अपने से छोटों का इकराम भी कर लो। अजीब अजीब लोग दूर हैं, बड़े बड़े आलिमों मुफ्तियों कारियों हाफिजों के असातिज़ा में से कुछ असातिज़ा ऐसे थे जो बुखारी शरीफ पढ़ा रहे हैं, बच्चे बुखारी शरीफ पढ़ रहे हैं, जगह ऐसी है कि बारिश होने की वजह से किताबों को पानी से बचाने के वास्ते हजरत ने हुक्म फरमाया थे उनके उस्ताद ने, भाई यहाँ से फलाई जगह चलो, यहाँ तो बारिश हो रही किताबें भीग जाएंगी, सारे बच्चे अपनी किताबों को पानी में भीगने से बचाने के लिए अपनी अपनी किताबें उठा के ले गए। बुखारी शरीफ इतनी मोटी किताब रहती, एक दो किताबों से ज्यादा नहीं ले जा सकते नौजवान बच्चे, वो बच्चे अपनी अपनी किताबें लेके भागे। अब उस्ताद भी वही पहुंच रहा जहाँ बच्चे पहुंचे, तो देखा कि उस्ताद ने पूरे बच्चों के जूते समेटे और पूरे बच्चों के जूते उठाने के जा रहे। बच्चों ने कहा हालत ये क्या ये क्या, उन्होंने फरमाया तुमने किताबों की भीगने से बचाया। मैंने कहा कि अब्दुल तलबा है तालिबे इल्म है हदीस पढ़ने वाले हैं, तुम्हारे चप्पल यहाँ रह जाएंगे तुम लोगों को बातें मसला होगा, इस बात इसमें क्या हरज की बात। ये मिटे हुए लोग थे, पर अपन लोगों का बड़ापन इतना ज्यादा है कि अपन किसी के जूते सीधे करने को भी अपनी हेटी समझते हैं, जाए के उठा लेके जाना और सही करना वो भी अपने से जुड़ी जोड़े। ऐसे काम करना जिसकी वजह से अंदर का ना टूटता है, پارا آہستہ آہستہ اترتا رہتا ہے, یہ غیظر بھی بڑا ہوا پارا ہے. عین حرارت ویسی ساری جگہ اور بھائی جن چیزوں سے اپنے دل کو بچانا ہے, جن کی وجہ سے دل آئینہ ہوتا ہے صاف ستھرا, ان میں سے غصہ ہے. غصہ آ گیا پی جاؤ بس, غصہ کئی کو آ گیا بول کے پریشان مت ہونا. غصہ آ گیا تو کیا سمجھنا, غصہ آ گیا تو یہ سمجھنا کہ ایک عظیم سعادت حاصل ہونے کا ذریعہ مجھے حاصل ہو گیا. جب غصہ کے پی جاؤں گا تو حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن میں روزے دار عالم سے بڑا اعزاز ملے گا, بڑا اعزاز ملے گا. کہہ دو غصے کو پی جاتا, اتنی بڑی چیز پانے کے واسطے غصے کو پی جانا. بعض بچے غصہ آیا تو آیا کہیں کو بول کے پریشان رہتے, آپ کو نوازنے کے واسطے آیا تھا, آپ اس سے فائدہ اٹھائیے. ویسے آج کل بچے کہتے تھے یہ برا خیال آنا ہے کہ نہیں, بہت پریشان رہتے, برا خیال کہیں ہوا تھا, برا خیال کہیں ہوا تھا, برا خیال نہیں آیا, برے خیال سے بچے نہیں تو مجاہدہ کہاں سے ہوں گا. برا خیال آیا اور آپ بچے, یہی تو ہے نا مجاہدہ, یہی ہے نا مخالفت. اب نفس کی مخالفت کا موقع ہی نہیں آیا, خاص کر کہتے تھے ہو جائیں. اس لیے بچے جس قسم کا سوال کرتے ہیں اسے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میں ایسا ہو جانا, میری برا خیال آنا ہی نہیں, برا خیال آنا ہی نہیں. خیال ہی صحیح نہیں ہے اس واسطے کہ یہ صرف فرشتوں کا قصہ ہے, یہ کہ ان کو نہیں آتا, وہ رکھ دیے ان کو تو آتا. بچے بچے سامنے بیٹھنا چاہیے, ادھر آزو بازو بیٹھ جاتے, خاص طور پہ دینی اسکولوں کے بچے دینے میں ایسے کہ بچے کو رکھو, ہمارے کو بڑی امیدیں وابستہ رہتے ہیں. یہ حافظ بن گئے, بومبے کورس پڑھ رہے ہیں, آدھا آدھا مولوی کے کورس پڑھ لیے, دو چار سال گزر گئے تب عالم دین بن جائیں گے, پھر قوم و ملت کی رہنمائی اور خدمت ان کی تصویر ہوگی, یہ کسی مسجد کے خطیب ہوں گے, کسی مسجد کے امام ہوں گے, کسی جلسے کے منتظر ہوں گے, کسی مدرسے کے منتظر کریں گے, دسیوں بیسوں بچے ان کے پاس پڑھیں گے. تو یہ لوگ صحیح ہو گئے تو یہ خوب گندا ہے, سمجھتے ہیں جانتے ہو, خوب گندا جانتے کہ نہیں جانتے, ہول سیل بولتے ہیں. ایک تیار ہو گیا, اس کے نتیجے میں اس کے ذریعے سے پروردگار عالم نے ایسی کچھ شکلیں بنا دی کہ اس کے ذریعے سے سو بنے.
جی
تو کھاتے میں آئے گا نہیں آئے گا, آئے گا نا. اس واسطے یہ بچوں کی طرف طرف زیادہ الٹے پاس ہوتے رہتا تھا بار 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 بار, بار. مگر بچے وہی بچے اچھے جو بچے اپنے اپنے جس کو اپن بڑا سمجھتے ہیں ان کی جو خواہش ہے وہ خواہش کو پورا کریں, وہ بچے اچھے بچے. اب ہم لوگ ایک امید کر کے بیٹھتے ہیں, دوسری امید کرتے ہیں, دوسری رپورٹ آتے رہتے ہیں, بولے تمہارا کریں بڑا سا بچہ ایسا کرا ویسا کرا ویسا کرا ویسا کرا. اب یہ نام کے بجائے بدنام کرا دیتے ہیں, ارے کیا بھائی کیا ہوا, کہہ کو بدنام کرا دے رہے بھائی, کیا کہتا ہے وہ, بدنام بھی ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا, نام تو پھر بھی ہے. اور یہ مطلب نہیں ہے کہ جنہیں ویسے کہ بچے ایسا مستقبل میں ایسا ہو جائے, امیدیں واپس ہو سکتی ہیں آپ لوگوں سے, نہیں ہے ایسا بھی نہیں. آج کل بہت سارے ایسے بھی ہیں, کالجوں کے ہیں, اسکولوں کے ہیں, کاروبار کی لائن کے ہیں, لیکن جب وہ صحیح ڈھنگ پر آ رہے ہیں تو غیر معمولی کو روزگار عالم ان سے کام لے رہے ہیں. اس وقت میں بڑے لوگ ہیں ایسے جن سے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ فائدہ اٹھاتے, میرے ایسے نہیں پڑے. اب خود آپ دیکھیے ہمارے اندر شاہ صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھوڑا ہی کسی جامع کے بارے میں, اس لیے بڑے اس سے فرماتے تھے کبھی کبھی حضرت, جب ان سے پوچھتے تھے کہ حضرت آپ حافظ ہیں کیا, عالم ہیں کیا, بولے تو حضرت بولتے تھے حافظ ہوں عالم ہوں کا باپ ہوں. क्या मतलब आप लोग अपने हिसाब से बन जाएंगे, हम अपने हिसाब से बोल रहे बोलो वो के ये कहना चाहते हैं मेरे बच्चे आप मिल जाए, मेरे बच्चे आलिम है, वो ये कहना चाहते हम लोग ये मफहूम में ले लेते हैं इसे, हम लोग भी दूसरे मफहूम में लेते हैं, हम लोग बड़ाई के जुमले में ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, वो हकीकत के सांचे में डाला हुआ जुमला उसमें एक और भी पहलू है कि सब आज अगर किसी का बेटा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, क्या है आपके बच्चे, मेरा एक बेटा डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक प्रोफेसर है, वो उससे बोलता कुछ मत पूछ, और अगर किसी बच्चे का किसी का बच्चा हाफिज बन जाए, किसी बच्चे का आलिम बन जाए, क्या कहते हैं हमारे बच्चे, हाफिज है मेरा बच्चा, आलिम है मेरा बच्चा, इसका मतलब यह है कि पढ़ाने वाले के दिल में अजमत नहीं, तो जिसने पढ़ाया उसके दिल में उसकी अहमियत वकात नहीं है, हमने कहा हाफिज का मकाम है और कहा दुनिया में डिग्री वाले का दूसरा मकाम है ना हाफिज का, अल्लाह ताला एजाज में फरमाएंगे कि दुनिया में तुम मेरा कलाम तक पढ़ते थे, मेरे सपने सीने में उसे महफूज किया था और एहतमाम से पढ़ते थे, आज तुम्हारे लिए एजाज ये है कि एक एक आयत पढ़ते जाओ, एक एक दर्जा चढ़ते जाओ, ये एजाज ये डिग्री हमारे उनकी देगा, बहुत बड़ी चीज है, हम लोगों का असल में अहमियत समझ में आई नहीं अब तक, इस वजह से जिस तरह के माहौल यहाँ पर लोग हैं वो माहौल ही ऐसा है, तो वक्ती तौर पर कौन सी चीज का नफा ज्यादा है वो देखने का आदि हो गया, अब आप इस साहब को देखेंगे साहब इनको जाके हजार रुपये तनखा में डॉक्टर को, अरे भाई उसको तो 60-70 से तो आजाद होता उसका, अब उसकी नतीजे में अहमियत बढ़ गई, उसकी अहमियत ज्यादा इसकी अहमियत कम, जबकि एक मुसलमान की नजर हकीकत पर रहनी चाहिए, ये महजूब नजर है, नजर की तीन किस्में याद है ना, खाली दुनिया पे ही नजर है बस, आखिरत पे नजर ही नहीं, खाली चीजों पे नजर है, चीजों की खालियत पे नजर नहीं, खाली माल पे नजर है, माल देने वाले हकीकी मौला ताला पे नहीं, महजूब नजर है ये, हिजाबी नजर, तो भाई गुस्सा गुस्सा आ जाए तो क्या करेंगे, गुस्सा पीने वाले समझते ना गुस्से के तकाजे से अमल नहीं करने, यह मतलब है गुस्सा पीना का, तो बोलने को जी चाह रहा जबान पकड़ लेना, मारने को जी चाह रहा हाथ रोक लेना, उसके सामने रहने की वजह से गुस्सा चढ़ते जा रहा, अपन हट जाना, अपन नहीं हट सकते तो उसको हटा देना, हो सका तो खुद जाके ठंडा पानी लेके पी लेना, थोड़ी और हिम्मत करके वजू कर लेना, बहुत ही गुस्सा आ गया तो ठंडा पानी बदन पे डाल लो, फिर उसके बाद में दो रकअत नमाज के लिए बांध के खड़े हो जाओ, सलाम देने के बाद में बोलो कि मौला मेरी मर्जी के खिलाफ इससे हुआ तो मेरे भी इतना गुस्सा आया, आपकी मर्जी के खिलाफ इससे कितनी दफा होता है, मौला आज मुझे गुस्सा आया था मेरे मेरे मुकाबले में कमजोर पर, अल्लाह मैंने आपके लिए पी लिया, मेरे जो गलतियां ऐसी हों जो आपकी मर्जी के खिलाफ हों, मौला अपने कर्म से आप भी मुझे माफ फरमा दीजिए, बोलिए एकदम चंद मरतबा करके देखो, इस नुस्खे पे अमल करके देखना जरा, बार 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 फिर देखो कैसा आसान होता है, शादी करिए पूछते रहता हूँ बच्चों को हमारे पास के यहाँ गुस्सा कैसा चल रहा तुम्हारा, इसलिए कि कई एक किस्म के बड़े कारनामों वाले शख्सियत तशरीफ फरमाए यहाँ, बर्तन धो देने वाले, किताबियां मोड़ देने वाले, खाना उठा के फेंक देने वाले, साधन उठा के फेंक देने वाले, बीवी को गुस्सा करने वाले, और कितने तो ऐसे ही होंगे कि उनको गुस्सा आ गया तो हाथ में जो मिला उठा के मार ऐसे भूलते रहता हूँ वक्तन वक्तन गुस्से का लेवल कम हो रहा है और अभी नहीं उससे पूछे तो वो तो बोलता कम हो रहा था तो नहीं बोलता उसके बाजू वाले से उसका हाल जानने वाले से पूछो तो बोलता नहीं साहब अभी जरा उसी से दिल आईने की तरह साफ सुथरा करना है तो ये गुस्से को पीना गुस्से से अपने आप को बचाना ज्यादा से ज्यादा ये होता है कि साहब सामने वाला ये समझता कि इन्हें कुछ भी नहीं कर सका मेरे को बोल के उन्हें समझता नहीं समझता मालूम नहीं अपन समझना शुरू कर देते ये भी एक अजीब गरीब नजर की बीमारी है अगर मैं नहीं निकाला गुस्सा तो सामने वाला ये समझेगा कि मैं कमजोर हो गया कमजोर पड़ गया कुछ भी नहीं कर सका ऐसा उन समझेगा बल्कि अंदर से शैतान समझाता बेल फर्ज अगर सामने वाला ऐसा बोल भी दिया तब भी क्या हर्ज है आपने किसके लिए गुस्से को पिया है उसके लिए थोड़ा ही पिया है जिसके लिए पिया है उसे तो मालूम है ना कि मेरे लिए इसने उससे तो पी लिया इसलिए मखलूक के लिए करना ही नहीं है कुछ भी आदमी ये जानना चाहिए कि नबी अलैहिस्सलाम के साथ में जो लोग आपको सताने वाले तकलीफें देने वाले अजियतें पहुंचाने वाले थे हुजूर बदला लेना चाहते तो ले सकते थे नहीं ले सकते थे कमजोरी थी क्या वो जरी और बाद बहादुर इतने थे कि बाद बाद जंगों के मौके पर पूरों के कदम उखड़ गए और लोग दुश्मन से अपने आप को बचाने के लिए पीछे हट गए और देखने वालों को यह समझ में आ रहा था कि मुसलमानों का पूरा लश्कर इस वक्त में शिकस्त गोया तस्लीम करके पीछे हट चुका है एक अकेले नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मन की तरफ आगे बढ़ते चले जा रहे अकेले मगर आपको मालूम है कि अपने साथ गलत सुलूक करने वालों के साथ आपने बदला लिया बदला नहीं लिया ना और आपको मालूम है कि 1400 साल गुजरने के बाद में आपकी इस खूबी को खूबी की हैसियत से सुनना सुनाना जारी है कि नहीं है कमजोरी सुनाई थी बहुत खराब हो रहे हैं आजकल हालात ये गुस्से की वजह से घरों में बड़े मसाइल पैदा हो बच्चों के गुस्से से अम्मा बाबा परेशान है अम्मा बाबा उनके गुस्से से बच्चे परेशान है शौहर के गुस्से से बीवी परेशान है बीवी के गुस्से से शौहर परेशान है ननंदों के गुस्से से भावजा भावजों के गुस्से से ननंदा एक बड़ा मसला बना हुआ है तो मतलब गुस्सा गुस्सा पी लेने की आदत डाले ना गुस्से को बहुत बहादुरी का काम है अगर आपको मालूम हो जाए कि साहब आज के आपके इस मजमे में एक ऐसा पहलवान आया हुआ है जिसने मुल्क के तमाम मुल्की लेवल की कुश्तियों में जिसने एक बार दीगरे कामयाबी हासिल करते हुए उसने तमगा जीत लिया है कि ये यहाँ का सबसे बड़ा पहलवान है अगर कोई ऐसा आदमी आया सब उसको देखना शुरू कर देंगे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया पहलवान वो है जो गुस्से को पी जाए वो नहीं जो दुश्मन को पछा समझ में आया लेकिन ये अमल भी जरा समझदारी से करना तो गुस्से को पी जाओ बोले तो सामने वाले के सामने आज दी इनके सारी नदामत पस्ती इतनी मोहताजी इतनी हाजतमंदी उसके सामने जनाब ऐसा इजहार मत करना कि जिसके नतीजे में ये समझ में आ जाए कि इसको तो जिधर चाहे मोड़ लगे ये ऐसा तासुर नहीं करना। आधी बात समझते आधी नहीं समझते गड़बड़ कर लेते कभी कभार थोड़ी सी नाराजगी जाहिर कर दी जाए कोई हरज नहीं। हमने सुना था एक बुजुर्ग का गुजर हुआ है इलाके में तो सांप को ने भी उसने हकीकत का इजहार किया तो फरमाया कि एक नसीहत है काटना नहीं किसी ही बोले अच्छी बात है। अब बच्चे देखे सांप है सांप है पहले तो डर डर के भागे फिर देखे कि नहीं कुछ करता वरता नहीं है नहीं बोले कंकर मारे फिर भी नहीं करा फिर दूसरा कंकर मारा फिर भी नहीं करा मशहूर हो गया काटता वरता नहीं बोले बच्चों की बात खेल मिल गया इन्हें जा रहा कंकर मार रहा उन्हें जा रहा कंकर मार रहा वो बुजुर्ग गुजरे करते देखे उसके सर के पूर तो मारा लग लग के निशाना पड़ गए पूरा गंजा हो गया उसको देख के बोले अरे क्या हाल हो गया तेरा मरने के करीब हो गया बोले तो हजरत आपकी नसीहत पे अमल करने का नतीजा है ये बोला नहीं काटना बोले ना उसका नतीजा है। तो उन्होंने फरमाया कि मैंने काटने से मना किया था फुनकारने से मना नहीं किया कम अज कम कोई करीब आया थोड़ा सा सांस की आवाज के जरिए से धमकाया तो जा सकता था ऐसे ही गुस्सा पी नहीं गुस्सा पी जाया करो बोले तो जाके ऐसी आजिजी इनके सारी कर रहे ऐसी मिन्ना समाज ऐसी मोहताजी का इजहार नहीं समझ में आ रहा है कि इसे तो जिधर चाहे मोड़ लो। हमारी हैदराबाद की इतला में जेब में रख ले रहे मियाँ जेब में ऐसा करता छोटा मियाँ की जेब में आ गया बात समझे अच्छी तरीके से गुस्से को पी जाए बहुत बड़ी सादत बहुत बड़ी करामत बहुत बड़ा एहसास बहुत बड़ी सिफत समझदारी के साथ करना। और भाई तीन चीजों से और बचना एक बुखल से बचना अल्लाह ने दिया है खर्च करने की जगह खर्च करने से अपने आप को रोकना नहीं चाहिए खर्च करने की जगह खर्च करो मौका है महल है जरूरत है फर्ज है वाजिब है वहां पैसे जमा कर करके न रखे ये खर्च करने का फायदा समझ में नहीं आया लोगों को उसके नतीजे में वही लोग समझते खर्च करे तो इतना कम हो जाता है बोलते और हम बरसों से एक चीज ये देख रहे हैं कि जब कोई आदमी खर्च करता रहता है तो रोजगार याद है उसके वास्ते रास्ता खोलते रहते और जो रोकता रहता है उसके लिए परोदिगार आलम भी अपना रास्ता रोक दे खर्च करते रहो माँ बाप पर अजीज वकारिब पर भाइयों बहनों पर मोहताजों पर गरीबों पर अगर अल्लाह ने दिया है तो खर्च करो नहीं दिया है अगर देगा तो खर्च करूंगा ये नियत रखो तो कर सकते ना मगर नियत करो सच्ची और पक्की इतने लोग आए बाहर जाते हैं बाहर जाने के रहता है आप दुआ भी कर दीजिए कोई खदी भी बताइए कोई अमल भी बताइए क्या करते हैं जाके बोलता है वो नियत कर लिया हूँ गया तो गए एक दिन ही मैंने देखिए मुर्दा की तनख्वाह पापा मिलते भेजना मिलती है माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी बात वहां चले गया वहां चले जाने के बाद में पहुंचने का दिन है और आज का दिन है आज एक दफा भी किसी भी पैसे के लिए भी जाए क्या मतलब जो नियत किसी वो नियत पक्की नहीं नियत बुख्ता रखे सारे खैर में अंजाम देने एक बुजुर्ग तो ऐसे थे कि तारा खाने में गए तो अंदर कोई आके घर पे आवाज दिया तो अंदर से ही बोले एक रुपया दे दो उसको, घर के लोग बोले बाहर नहीं आ सकते थे, दो मिनट ठहर के नहीं बोल सकते थे, वहां से अंदर से गए के वास्ते बोले। बोले इस वक्त में दिया लाया दे देना बोल गया तुमने फौरन बोल दिया, इन्होंने दो मिनट चार मिनट के बाद में पता नहीं दिल की दुनिया बदल जाए तो फिर क्या होगा। इतना एहतमाम करते थे हमारे बड़े लोग, खर्च करने का मौका बना तो खर्च करता, बहुत अच्छी चीज है, बकील जन्नत में नहीं जाएगा है ना, हदीस में अल्लाह ने दिया है तो खर्च करो, नहीं दिया है तो देने पर खर्च करने की नीयत रखते, तो खाली नीयत करने में भी बखल करते। हालत ऐसी है जो गरीब रहती है नीयत में भी बखल होता है, सही भी दे देंगे तो देना पड़ेगा। अरे भाई अच्छी सिफात को अपनाने में आपके को खराब दिली का मुजाहरा करना चाहिए। और भाई देखो दो चीजें और रह गई, एक रिया और दूसरे कीना। मखलूक के देख लेने का नाम रिया नहीं है, अंदर से किसी अमल को करने में ये नियत करना कि उन्हें देखना, उनको मालूम होना, उनको समझ में आना, उनको आज पता चलना, ये जो अंदर आता ना है ये रिया। ऐसा तो मैंने कहा कुर्ता पाजामा क्यों नहीं पहनते लोग, तुम हमेशा एक टिकट बैठ क्यों रहते हो, ये तो सालिकीन या नेक लोगों के लिबास में ये कहीं को पहनते हो, कुर्ता पाजामा कहीं को नहीं पहनते। वो लोना देख के मैं जिंदा समझेंगे बल्कि नहीं पहन देना, लोगों को देखने का नाम लिया थोड़ा ये, वरना तो मस्जिद की जा रहे नमाज पढ़ना मुश्किल हो जाएगी। लोगों के किसी अमल के देखने का नाम लिया नहीं है, अपने दिल में किसी मखलूक की निगाह में बाइज्जत बनना, बाइज्जत बनना, बड़ा बनना, नेक बनना, परहेजगार बनना, या उनसे कोई मफादात हासिल करना, या उनको इत्मीनान दिलाना कि मैं भी नमाजी हूँ, परहेजगार हूँ, इस मकसद से अगर हम किसी काम को अंजाम दे रहे हैं जिसका नाम रिया है, और ये रिया इतना बड़ा जुर्म है कि शिर्क की फेहरिस्त में दाखिल है, बहुत बड़ा जुर्म। और भाई दूसरों के बारे में दिलों में ये बोझ रहता, मैल फैल रहता, खराबियां रहते, इससे अपने दिल को पाक साफ रखना, तीन ऐसे बचाना था। अगर इन चीजों से अपने आप को बचाएंगे तो ऐसी सूरत में दिल होगा साफ सुथरा, आईने की तरह होगा। लेकिन अभी ये तरीकत के जाहिर का आधा हिस्सा हुआ है ना, अब वो इबारत सुन लीजिए, तरीकत के का एक जाहिर है और एक बातिन। जाहिर तरीकत का बुरी आदतों से बाज रहना है और नेक खसलतों से को इख्तियार करना है। तो बुरी खसलतों से बाज रहने के बारे में बात सुने ना, अब इसके बिलमुकाबिल अच्छी खसलतों से आरास्ता होना या अच्छी खसलतों को इख्तियार करना, इसकी तरफ भी ऐसे ही तवज्जो कीजिए जैसे आपने बचने के मामले में तवज्जो की। ये तरीकत का जाहिरी पहलू है, अल्लाह जल्ल शानहू से इल्म अमल की सब को तौफीक अता फरमाए। اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعافية والغنى، اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى ودمنا بالعافية، ربنا اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وصل وسلم وبارك على سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين.